संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। बड़े भावनाओं की चर्चा चल रही है, इसमें आरंभ की 6 भावनाओं की चर्चा हुई, जिनके नाम हैं अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना और असुचि भावना। ये जो 6 भावनाएं हैं, इन भावनाओं के माध्यम से ये शरीर आदि संयोग को ही चर्चा का मुख्य विषय बनाया है। इस आरंभ की 6 भावनाएं मुख्य रूप से शरीर और गौण रूप से स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव इन सब संयोगों के आसपास ही घूमती हैं और इनमें इन संयोगों की क्षणभंगुरता, असरणता, असारता, निरर्थकता, भिन्नता बताकर, अपवित्रता बताकर इनसे एकत्व ममत्व तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और जिन ज्ञानी धर्मात्माओं के इनसे एकत्व ममत्व नहीं भी है, तो उनके जो राग विद्यमान है उस राग को तोड़ने के लिए इनसे इनके इन स्वरूप का स्वरूप बताया गया है। इन संयोगों से हटकर आत्मा निज आत्मा में आए, इसलिए साथ साथ में जब अनित्य भावना में संयोगों की क्षणभंगुरता को बताते हैं, तो साथ में यह आत्मा अनादि अनंत काल तक रहने वाला नित्य महाप्रभु है, इसका भी चिंतन चलता है। जब ये बताते हैं कि ये संयोग क्षणभंगुर हैं, असरण हैं, इन्हें कोई जाने से रोक नहीं सकता है, जो संयोग है उनका वियोग अवश्य होगा, वहीं ये बताते हैं कि तेरा भगवान आत्मा ऐसा महातत्व है, कैसे दुनिया की कोई ताकत नाश नहीं कर सकती है, इसका कभी नाश होता नहीं है, ये परम शरणभूत है। जब संसार भावना में ये बताते हैं कि संयोगों में कोई सार नहीं है, उनसे तुझे सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है, वहीं साथ में ये भी बताते हैं कि तेरा भगवान आत्मा परम सारभूत पदार्थ है और उसमें से तुझे अनंत सुख की शांति की प्राप्ति हो सकती है। एकत्व भावना में ये बताते हैं कि तेरे सुख दुख का कोई साथी नहीं है, संसार में 4 गतियों में भी तुझे परिभ्रमण करना होगा तो अकेले ही करना होगा, और मोक्ष में भी जाएगा तो अकेला ही जाएगा, और ये तेरा जो अकेलापन है ये तेरा कोई दुर्भाग्य नहीं है, ये सौभाग्य है, क्योंकि इन संयोगों के अधीन तू नहीं है, इन संयोगों के सहयोग की तुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को बताने वाली एकत्व भावना है। और ये संयोग भले ही तेरे को तेरे एकदम नज़दीक दिखाई देते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये मैं ही हूँ, फिर भी इनमें और तेरे में पूरी पूरी भिन्नता है, ये एकदम जुदे हैं और तू जुदा है, दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, इसलिए तुझे इनकी तरफ देखने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तेरा आत्मकल्याण करने के लिए तुझे इनके सहयोग की आवश्यकता नहीं है, अपितु इनकी तरफ लक्ष्य जाने से ही तेरा ये संसार खड़ा हुआ है, इसलिए तू सब प्रकार से इनको भिन्न जानकर अपने आत्मा को अपने उपयोग को ही धर ला। इतनी बातें समझा देने के बाद भी इसका थोड़ा बहुत राग इन संयोगों की तरफ शरीर आदि संयोगों की तरफ रहता है, तो फिर इन संयोगों की अपवित्रता बताकर, इस शरीर की मलिनता बताकर, उनसे शरीरादिक संयोगों से इसे विरक्त किया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि आरंभ की जो ये छह भावनाएं हैं, ये शरीर आदि संयोगों से विरक्ति उत्पन्न करके अपने आत्मा के उपयोग को अपने आत्मा में लाने की तरफ ही प्रेरित करती हैं। और इन सब के मूल में केंद्र बिंदु शरीर को उन्होंने बनाया है, और शरीर के संयोग का नाम जीवन और शरीर के वियोग का नाम मरण है लोक में। इसलिए जीवन मरण की चर्चा के माध्यम से ही कि मरण निश्चित होगा ये अनित्य भावना, मरण से कोई बचा नहीं सकेगा ये असरण भावना, और संयोग रूप जीवन में भी कोई सार नहीं है, कोई तेरा साथी नहीं है, तू इनसे भिन्न पदार्थ है, इस तरह से भी संयोगों से इस शरीर के ही मुख्य लग करके सारी बात हुई है। अब आगे आश्रव भावना में आत्मा की तरफ जाते हैं। अभी तक तो संयोगों की तरफ थे, उनका चिंतन चल रहा था क्योंकि आत्मा उनमें उलझा था। अब आत्मा अपने द्रव्यगुण पर्याय के भीतर आ गया है, तो उसमें भी कौन सी ऐसी चीज है जो छोड़ने लायक है और कौन सी ऐसी चीज है जो ग्रहण करने लायक है, उसकी चर्चा अब आगे की जाएगी। आरंभ की ये छह भावनाओं को वैराग्य परक कहा जाता है। ये जगत से अरुचि पैदा कराने वाली हैं, और अंत की जो छह भावनाएं हैं वो आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बुद्धि दुर्लभ और धर्म भावना, ये तत्व परक चिंतन की भावनाएं हैं। इनमें तत्व की बातें मुख्य रहती हैं। यद्यपि शुरू की छह भावनाओं में भी तत्व की बातें रहती हैं, लेकिन गौण रूप से, मुख्य रूप से वैराग्य की मुख्यता होती है। और अंत की छह भावनाओं में तत्व मुख्य हो जाता है और वैराग्य गौण हो जाता है, होती दोनों ही बातें दोनों में हैं। अब ये कह रहे हैं आश्रव भावना में कि ये जो संयोगी पदार्थ हैं जिनके बारे में तुझे अभी तक ये बताया है कि उनके प्रति जो तेरा एकत्व ममत्व है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, इनसे जो तेरा ये राग है, इनके प्रति जो तेरे द्वेष वाक्य परिणाम हैं, ये सब भी तू नहीं है। इनका एक शास्त्रीय शब्द है, उसका नाम है आश्रव भाव। क्या इन संयोगों के प्रति एकत्वमत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इसका नाम है मिथ्यात्व नाम का आश्रव भाव। और इनसे राग द्वेष करना, इनका नाम है कसाय नाम के आश्रव भाव। तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व, राग द्वेष अर्थात मिथ्यात्व और कसाय, इनका नाम है आश्रव, और ये भगवान आत्मा इनसे भी भिन्न है। जैसे वहां बताया था कि शरीर अनित्य है और तू नित्य है, ऐसे ही आश्रव भाव के बारे में भी इसी तरह का चिंतन किया जाता है। और समय सार की हम 72-74वीं गाथाओं में देखते हैं तो यहां आश्रव को और आत्मा को अलग अलग खड़ा किया गया है। और उसके पहले ही जो 69वीं-70वीं गाथा है उसमें तो ये साफ लिखा है कि जावण वेद विशेषण तरंतु आदा सवान दो नंपी अन्नानी तावदिशो को आदि बठ दो जीवो। कि जब तक यह आत्मा आत्मा और आश्रवों में भेद नहीं जानेगा तब तक ये अज्ञानी रहेगा। अज्ञानी की परिभाषा नहीं, ये अज्ञानी आत्मा कब तक रहेगा? इस प्रश्न के उत्तर में वो कहते हैं कि जब तक यह आत्मा आत्मा और आश्रमों में भेद नहीं जानेगा। आश्रम माने मिथ्यात्व और राग देश, मिथ्यात्व और कसाय, पांच प्रकार के आश्रम बताए ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। मोटे तौर से मिथ्यात्व और कसाय कहने में सब आ जाते हैं, क्योंकि अविरति भी कसाय का ही भेद है, प्रमाद भी कसाई को ही कहते एक तरीके से प्रकारांतर से। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो आश्रम भाव हैं, इनमें और जिस आत्मा में जो आश्रम भाव पैदा होते हैं, उस आत्मा में जब तक यह आत्मा भेद नहीं जानेगा, इन दोनों को जुदा जुदा नहीं जानेगा, तब तक अज्ञानी रहेगा, और जब तक अज्ञानी रहेगा तो क्रोधादिक भावों में वर्तता रहेगा, और जब तक क्रोधादि भाव रहेंगे तो उसे कर्म का बंधन होता रहेगा। इस तरह ये संसार चक्र सदा चलता ही रहेगा। इसलिए आश्रम भावना में ये आश्रम भाव यद्यपि अपनी आत्मा में ही पैदा हुए हैं, फिर भी आत्मा नहीं है, आत्मा से जुदे हैं, हे हैं, छोड़ने लायक हैं, और आत्मा परम उपादेय है, ग्रहण करने लायक है। इस प्रकार का चिंतमन किया जाता है। ये जो चिंतमन अपन ने किया था देह के लक्ष्य से जो छह भावनाओं में, यद्यपि उसमें आधी भावनाएं चली गई, तो भी वो समझना उतना कठिन नहीं है, क्योंकि देहादि पदार्थ तो एकदम आत्मा से जुदे ही हैं, लेकिन ये आश्रम भाव तो आत्मा में ही पैदा होते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि ये आत्मा नहीं है, तो ये सहज बात समझ में नहीं आती कि जो हम में ही पैदा हुई है वो हम कैसे नहीं, हमारी पर्याय हम में पैदा हुई है वो हमारा कैसे नहीं, हमारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो हमारा कैसे नहीं, पड़ोसी का बच्चा अपना नहीं है ये समझाना तो बहुत आसान है, और अपना बच्चा भी अपना नहीं है ये कठिन है ना। तो आत्मा में ये मोह राग द्वेष के भाव पैदा होते हैं, और ये भी आत्मा नहीं है, ये बात इस आश्रम भावना में विचार की जाती है। तो इसलिए आचार्यों ने ये कहा कि ऐसा थोड़ी है कि जो जो चीज अपने में पैदा हो वो अपनी हो, और उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि काई यद्यपि जल में पैदा होती है, काई तो समझते शैवाल जो पानी के ऊपर ऊपर एक हरी हरी घास सी जम जाती है, आपने देखी होगी, उसको काई बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं संस्कृत में, वो पानी में ही पैदा होती है, पानी के बिना कहीं पैदा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो पानी नहीं है, पानी का मैल है। ऐसे ही ये जो आश्रम भाव हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, यद्यपि ये आत्मा में ही पैदा होते हैं ये सत्य है, फिर भी ये आत्मा के मैल हैं, आत्मा नहीं है। आत्मा में पैदा होने पर भी आत्मा के मैल होने से ये छोड़ने लायक है। जगत में जो जो भी मैल होता है ना, उसको हम निकाल देते हैं। तो उन्होंने काई का उदाहरण देके ये बात समझाई कि आत्मा में पैदा होकर के भी आत्मा के मैल हैं, और मैल हमेशा छोड़ने लायक होता है, हटा देने लायक होता है, और अपना वो वस्त्र पकड़ने लायक, वस्त्र में जो मैल हो गए तो वो धोके निकाल देने लायक होता है और वस्त्र रख लेने लायक होता है। ऐसे आत्मा का जो मैल है वो आश्रम भाव है, वो निकाल देने लायक है, इसलिए वो हे है, और आत्मा परम पवित्र पदार्थ है, इसलिए वो परम उपादेय है। फिर दूसरा तर्क देते हैं कि भले ही वो अपने ही घर में पैदा हुआ हो, लेकिन अपना घातक हो तो उसे दुनिया में कौन अपना कहता है। ऐसे ही जे आश्रम भाव यद्यपि आत्मा में पैदा हुए हैं, लेकिन आत्मा का घात करने वाले हैं, आत्मा को तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, इसलिए आत्मा नहीं है। इसके लिए उदाहरण दिया है, प्रक्षे प्रक्षवत, जैसे पीपल में लाख पैदा हो जाती है। जिस पीपल में लाख पैदा हो जाती है, कहते हैं वो पीपल उखड़ जाता है, उसकी उम्र एक तरह से खत्म हो गई, उसका रस सूख जाएगा, क्योंकि वो रस ही तो लाख के रूप में निकल के बाहर आ गया है, तो नीरस हो जाएगा, तो सूख जाएगा। तो यद्यपि लाख पीपल में ही पैदा होती है, लेकिन वो पीपल की घातक है, इसलिए पीपल नहीं है। देखो, फल भी पीपल में पैदा होता है, पत्ते भी पैदा होते हैं, तना भी पैदा होता है, लेकिन वे पीपल हैं। और लाख भी पैदा होती है, वो पीपल नहीं है, क्योंकि वो पत्ते डालियां पीपल का नाश नहीं करती हैं, लेकिन वो लाख पीपल का नाश करती है। इसलिए आत्मा में ज्ञान दर्शन पैदा होते हैं तो वे आत्मा हैं कहते हैं, लेकिन ये जो राग द्वेष हैं ये तो लाख जैसे हैं, जो आत्मा को तकलीफ पहुंचाते हैं, इसलिए आत्मा नहीं है। लोक में भी होता है ना, जो पुत्र हमारा घातक हो, जिसने बाप को जेल में डाल दिया हो, बाप की हत्या की हो, उसको भी कोई अपना कहता है। इसे मैं एक उदाहरण से समझे, सच्ची घटना है कि पर्यूषण में मैं व्याख्यान कर रहा था, व्याख्यान के बीच में ही एक बुढ़ी अम्मा खड़ी हो गई और बोली, पंडित जी रहने दो, बहुत हो गया व्याख्यान, मेरी बात सुनो। तो मैंने कहा बाद में पूछ लेना, कि नहीं नहीं बीच में बोलूंगी। मैं बोल के बड़े बड़े सीढ़िया पगड़ी साहब जो आपके माथे से हिला रहे हैं, मेरे घर में 3 दिन से खाने को नहीं है, मैं भूखी बैठी हूं, और ये पंच लोग मेरा कोई इंतजाम नहीं करते हैं। तो उस अम्मा की बात सुनकर मेरे अंदर में ऐसा लगा कि बात तो ठीक कहती है, ये बड़े बड़े दानवीर की पदवियां लेके बैठे हैं, और एक साधर्मी बहन बुढ़ी अम्मा गांव में जिसके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो, है ना, तो फिर एक क्या चर्चा निरर्थक है ना। इतना साधर्मी वात्सल्य तो चाहिए, और साधर्मी की बात ही क्या है, कोई भी व्यक्ति प्राणी भूखा हो तो उसके लिए कम से कम भोजन की व्यवस्था तो जिसके घर व्यवस्था है उसे करना ही चाहिए ना। तो मैंने जरा सबको डांटना शुरू किया, तो 2 मिनट तक तो सब सुनते रहे शांति से। बाद में एक उसमें से बोला कि पंडित जी बहुत हो गया, आप रहने दीजिए, चुप रहिए। क्यों, क्या बात है, करना चाहिए ना तुम्हें, तुम्हारी ड्यूटी है कि नहीं। तब वो बोले कि इसके 4 बेटे हैं, और एक एक की 4 दुकानें हैं, सब करोड़पति हैं, इसके बच्चे ऐसी क्यों नहीं करते, क्या व्यवस्था। बात तो सच्ची है, ये 4 बेटे हैं, करोड़पति हैं, उसकी समाज व्यवस्था क्यों करेगी। तो मैंने कहा अम्मा जी क्या बात है, बोले मेरे कोई बेटा फेटा नहीं है। वो बोली मेरा कोई बेटा नहीं है। मैंने उसे कहा भी ये तो करी, मेरा कोई बेटा नहीं है। माने प्रवचन बंद हो गए, पंचायत शुरू हो गई। वो कहे कि मेरा कोई बेटा नहीं है, और पंच कहें इसके 4 बेटा हैं। बोलो अब कैसे नक्की करें कि उसका बेटा है कि नहीं है। जब द्वारा पंचों से पूछा तो उन्होंने अपनी बात को दृढ़ता से दोहराया, और सभी बोलने लगे कि इसके 4 बेटे हैं, नाम बताने लग गए। तो मैंने कहा अम्मा ये लोग सब बोल रहे हैं, ये सब लोग झूठ थोड़ी बोलते हैं। तो आंख में आंसू ला करके बोली बेटा इससे तो वे पैदा होते ही मर जाते तो अच्छा था, मेरे जो बेटे हैं ना वो पैदा होते ही मर जाते तो अच्छा था। बोलिए इस वाक्य में इस बात की स्वीकृति तो आई गई ना कि बेटे हैं, क्योंकि पैदा होते ही मर जाते तो अच्छा था, माने पैदा हुए हैं और मरे नहीं हैं, इतना तो नक्की हो गया ना। इनका क्यों ऐसा क्यों बोलती है, बोले यदि वो पैदा होके ही मर जाते के नहीं होते तो आज ये पंच व्यवस्था कर देते मेरे खाने पीने की। तो उनका तो होना नहीं होने से भी बुरा है, क्यों? वे खुद व्यवस्था करते नहीं हैं और वे हैं इसलिए पंच व्यवस्था नहीं करते हैं। तो उनका होना तो मेरे लिए नहीं होने से भी ज्यादा बुरा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उस मां के बेटे हैं कि नहीं। अब म्युनिसिपैलिटी का रजिस्टर देखेंगे तो उसमें तो उसके नाम लिखे हैं, लेकिन वो कहती है मेरा कोई बेटा नहीं, भले ही जो मेरे को रक्षा ना करें और मेरे को दुख का कारण बने उसको मैं अपना नहीं मानती। तो लाख ऐसे ही पीपल में पैदा हुई, लेकिन पीपल कहता है मैं उसे अपना नहीं मानता। आत्मा में राग देश मुझे पैदा हुए तो आत्मा को कहना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए दुख देने वाले हैं इसलिए ये मेरे नहीं है। देखो हो करके भी नहीं है, ये अपेक्षा है जैन दर्शन की। राग देश आत्मा में पैदा हुए हैं फिर भी उनका नाम रखा आश्रव, आत्मा ने अपना गोत्र उन्हें नहीं दिया। क्या नाम रखा उनका? आश्रव। भगवान आत्मा ने उसे अपना नहीं माना क्योंकि उनके होने से अनंत दुख की प्राप्ति हुई और उनके जाने से सुख की प्राप्ति होगी। तो वे हे हैं कि नहीं? छेड़ाला में पंक्ति आती ना, आश्रव दुख कारे घने रे, बुद्धि बनते तने नेरे रे रे। के आश्रव भाव घना दुख देने वाले हैं इसलिए बुद्धिमान लोग इनसे दूर रहते हैं। ये आश्रव कहते स्वयं ही दुख ही है। मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ, जब गुस्से में आदमी आता है तो साक्षात दुख रूप होता कि नहीं होता? और भगवान आत्मा सुख स्वरूप है इसलिए इनसे भिन्न है। और दुख छोड़ने लायक होता है और सुख रखने लायक होता है इसलिए जे हे हैं और आत्मा उपादेय है। आश्रव दुख के कारण है क्योंकि क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व के कारण कर्म बंद होता है तो उनके उदय में जीव दुखी होता है, इसलिए दुख के कारण है। और ये भगवान आत्मा अनंत सुख का कारण है इसलिए ये उपादेय है और वे हे है। तो ये आश्रम मलिन है, घातक हैं, है ना? हमारे आत्मा के मैल हैं, आत्मा का घात करने वाले हैं, दुख रूप हैं और दुख के रूप में फलते हैं और जड़ हैं और भगवान आत्मा चेतन है। तो इस तरह आश्रव और भगवान आत्मा के बीच में भेद विज्ञान करना और इसका चिंतमन करना ये आश्रव भावना है। ठीक है, आश्रव भावना में अपने में ही उत्पन्न होने वाले जो विकारी परिणाम हैं उनसे भिन्नता की भावना भाई जाती है। क्या आश्रव भावना में आश्रव कितने प्रकार के होते हैं? 57 प्रकार के होते हैं, उनकी गिनती नहीं की जाती है, उनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, और जीव प्रदेश बंधे बिंदी सो बंधन कबहुन तजिए। ये आत्मा के दुख के कारण है इसलिए इन्हें छोड़ दो, बस ये आश्रव भावना है, इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मिथ्या अवरति अरु प्रमाद प्रमाद सहित उपयोगा, यही आत्म के दुख कारण इन ताते इनको तजिए। तो ये आश्रव भाव, अब मैंने कहा था कि इन भावनाओं में तत्वों का चिंतमन होता है, तत्व परक चिंतमन होता है। तो आश्रव भावना में बंध आश्रव का भी विचार होगा और बंध का भी विचार होगा और पुण्य का भी विचार होगा और पाप का भी विचार होगा। चार चीजों का चिंतन इस आश्रव भावना में किया जाता है। कौन कौन सी चार चीजें? आश्रव, बंध, पुण्य और पाप। क्यों? इसलिए किया जाता है कि बंध नाम की कोई अलग भावना नहीं है, पुण्य नाम की कोई अलग भावना नहीं है, पाप नाम की कोई अलग भावना नहीं है, तो कहीं कहीं तो उनका चिंतन होगा ना। तत्व तो वो भी है ना, सात तत्वों में, नौ तत्वों में उनके भी नाम आते कि नहीं आते हैं? इसलिए इस आश्रव भावना में बंध भावना का भी होगा, बंध की चर्चा भी होगी, पुण्य पाप की भी होगी। और भाव आश्रव और भाव बंध की अपेक्षा विचार करते हैं, समझे ना, भाव आश्रव भाव बंध की अपेक्षा विचार हम करते हैं तो देखते हैं तो ये बालक अलग सिद्ध हो जाती, होती नहीं है। तो इस तरीके से इनमें ये सारों चीजों का चिंतन आता है, और इस बात को हम गहराई से जब तक नहीं समझेंगे ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी। अभी इतनी ही बात कहते हैं, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।